एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज की ज्ञान गोष्ठी में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये जुनून, जिद और लगातार संघर्ष की दास्तान है। किताब है शू डॉग, अ मेमोयर बाय द क्रिएटर ऑफ नाइकी, और इसे लिखा है खुद फिल नाइट ने।
जी हाँ, फिल नाइट नाइकी के सह संस्थापक। और सोचिए जरा, एक बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले थोड़े शर्मीले से अकाउंटेंट, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जाने माने स्पोर्ट्स ब्रांड्स में से एक खड़ा कर दिया।
है ना कमाल की बात।
बिल्कुल। लेकिन ये किताब, जैसा आपने कहा, सिर्फ सफलता का गुणगान नहीं करती। ये उस उथल पुथल, उन अनगिनत मुश्किलों और यहाँ तक कि दिवालिया होने के कगार पर खड़े होने के अनुभवों को बड़ी ईमानदारी से सामने रखती है। वो सब कुछ जो उस चमकते हुए सूश लोगों के पीछे छिपा है।
और शायद यही बात इसे आज भी इतनी जरूरी और दिलचस्प बनाती है ना? ये दिखाती है कि कैसे एक विचार, जिसे नाइट खुद मजाक में एक क्रेजी आइडिया कहते थे,
हाँ, क्रेजी आइडिया,
वो दुनिया बदल सकता है। तो ये कहानी सिर्फ बिजनेस या उद्यमिता के बारे में नहीं है।
नहीं, ये मानवीय जज्बे के बारे में है, हार न मानने की इच्छा शक्ति के बारे में है।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं फिल नाइट के सफर की गहराई से पड़ताल। तो कहानी शुरू होती है पोर्टलैंड, ओरेगन से। साल था 1938 जब फिल नाइट का जन्म हुआ। उनके पिता बिल नाइट एक अखबार के प्रकाशक थे, काफी सख्त, अनुशासन पसंद।
और माँ डॉन नाइट, वो शांत स्वभाव की थीं, पर उनमें गजब की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। फिल खुद बचपन में थोड़े अंतर्मुखी थे, मतलब अपने में रहने वाले, और उन्हें दौड़ने में एक अजीब सा सुकून मिलता था।
हाँ, दौड़ना ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया, खासकर उनके कोच बिल बावरमैन के साथ।
जी, पहले हाई स्कूल में, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में। और बाउमन सिर्फ कोच नहीं थे, वो एक तरह के आविष्कारक थे। हमेशा जूतों को एथलीट के लिए कैसे बेहतर बनाया जाए, इसी कोशिश में लगे रहते थे।
अच्छा।
हाँ, और नाइट ने उनसे सीखा कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना कितना जरूरी है, कैसे बारीक सुधार बड़े नतीजे ला सकते हैं। दौड़ना और ये बेहतर करने की चाहत, ये एक तरह से उनके पूरे जीवन का प्रतीक बन गई।
यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन के बाद वो स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल गए, और वहीं एक क्लास असाइनमेंट के लिए उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा। विषय थोड़ा अनोखा था।
हाँ, काफी अनोखा। क्या जापानी स्पोर्ट्स शूज जर्मन स्पोर्ट्स शूज के साथ वही कर सकते हैं जो जापानी कैमरों ने जर्मन कैमरों के साथ किया था?
क्या बात है, मतलब पहले ही सोच लिया था।
बिल्कुल, इसी पेपर में वो बीज था जिससे आगे चलकर नाइकी का पेड़ उगना था। उनका तर्क सीधा था, जापान में मजदूरी कम है और वो अच्छी क्वालिटी के जूते बना सकते हैं जो एडिडास और प्यूमा जैसे स्थापित जर्मन ब्रांड्स को टक्कर दे सके।
ये सिर्फ एक क्लास का पेपर नहीं रहा फिर तो?
नहीं, ये उनके दिमाग में बैठ गया। और फिर आया 1962, जब उन्होंने इसे हकीकत में बदलने का फैसला किया, जिसे वो खुद कहते थे क्रेजी आइडिया।
और ये क्रेजी आइडिया क्या था? दुनिया घूमना?
हाँ, बहाना तो दुनिया घूमने का था, लेकिन असल मकसद था जापान जाकर अपने उस बिजनेस स्कूल वाले आइडिया को परखना।
अच्छा।
वो जापान पहुंचे, सीधे कोबे शहर में ओनिसुका टाइगर कंपनी के दफ्तर, बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी कंपनी के नाम के।
अरे वाह, ये तो बड़ा कदम था।
बिल्कुल। और वहीं मीटिंग में बैठे हुए, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप किस कंपनी से हैं,
तब
उन्होंने तुरंत एक नाम गढ़ दिया, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, BRS। ये कंपनी उस वक्त, सच पूछिए तो, सिर्फ उनके दिमाग में थी।
सिर्फ दिमाग में?
कमाल है।
हाँ,
लेकिन उनका आत्मविश्वास, उनका जुनून, वो काम कर गया। ओनिसुका के अधिकारी मान गए, उन्हें अमेरिका में अपने टाइगर जूते बेचने के वितरण अधिकार मिल गए।
या ये वाकई दुस्साहसी कदम था, मतलब यहीं से उनका वो तरीका बना, पहले छलांग लगाओ, फिर उसे सही साबित करने के लिए जी जान लगा दो।
बिल्कुल। वो कुछ सैंपल जूतों और एक अनिश्चित से करार के साथ अमेरिका लौटे, और शुरुआती साल बहुत कठिन थे, बहुत ज्यादा।
कैसे, मतलब क्या मुश्किलें थी?
नाइट अपनी अकाउंटेंट की नौकरी करते रहे साथ साथ, क्योंकि BRS से कोई कमाई नहीं थी, शून्य।
अच्छा, जीरो इनकम।
हाँ, वो अपनी कार की डिक्की से ट्रैक इवेंट्स में जूते बेचते थे। पैसों की तंगी इतनी ज्यादा थी कि हर महीने किराया देना, जूते मंगवाना, ये सब एक चुनौती होती थी। कंपनी तो लगातार मतलब कई बार दिवालिया होने के कगार पे झूलती रहती थी।
इतनी मुश्किल, पैसों की लगातार तंगी, अनिश्चितता, कभी उन्हें लगा नहीं कि भाई ये क्रेजी आइडिया वाकई पागलपन है, छोड़ देना चाहिए।
देखिए, किताब में ऐसे पल आते हैं जब वो बहुत निराश हुए, बहुत ज्यादा, लेकिन छोड़ने का विचार शायद कभी गंभीरता से नहीं आया। उनमें एक जिद थी, एक विश्वास था कि अमेरिकी धावकों को बेहतर और सस्ते जूते मिलने चाहिए। और फिर 1964 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उनके पुराने कोच बिल बोवरमैन,
वही बोवरमैन,
हाँ वही,
हाँ।
उन्होंने $500 का निवेश किया,
सिर्फ $500।
सुनने में शायद आज ज्यादा ना लगे, लेकिन उस वक्त,
हाँ।
और खासकर बोवरमैन का नाम जुड़ना,
हाँ।
बोवरमैन का नाम और जूतों को बेहतर बनाने का उनका जुनून, वो BRS के लिए अनमोल था। ये सिर्फ पैसे का निवेश नहीं था, ये एक तरह से गुरु का शिष्य पर भरोसा था, एक विश्वसनीयता थी जो इससे मिली।
सही काम।
और यहीं से BRS सिर्फ जूते बेचने वाली कंपनी नहीं रही, वो जूतों को बेहतर बनाने वाली एक इनोवेटिव कंपनी बनने की राह पर चल पड़ी।
अच्छा।
फिर जेफ जॉनसन जैसे जुनूनी लोग जुड़े, वो पहले फुल टाइम कर्मचारी बने। जॉनसन खुद एक धावक थे।
अच्छा, वो भी धावक थे।
जी हाँ, और उन्होंने ग्राहकों से सीधा रिश्ता बनाया, उनकी जरूरतें समझी। उन्होंने कैलिफोर्निया में पहला रिटेल स्टोर भी खोला, लेकिन दूसरी तरफ ओनित्सुका के साथ रिश्ते,
हाँ।
वो लगातार बिगड़ते जा रहे थे।
ओनित्सुका के साथ क्यों?
डिलीवरी में देरी होती थी, वादे पूरे नहीं होते थे, और हमेशा ये डर लगा रहता था कि वो कभी भी वितरण अधिकार छीन सकते हैं।
और आखिर में वही हुआ जिसका डर था।
हाँ बिल्कुल, 1971 में ओनित्सुका ने BRS को धोखा देने और उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा संकट था, लेकिन कहते हैं ना, हर संकट एक अवसर लाता है।
हाँ।
इसी संकट ने नाइट और उनकी टीम को अपना खुद का ब्रांड बनाने पर मजबूर कर दिया, वरना सब कुछ खत्म हो जाता।
तो यहीं से नाइकी का जम हुआ।
जी हाँ बिल्कुल, यहीं से नाम का आइडिया जेफ जॉनसन को सपने में आया। नाइकी, जीत की ग्रीक देवी।
सपने में।
हाँ, नाइट को ये नाम कुछ खास पसंद नहीं आया था शुरू में, पर टीम को भा गया। और फिर लोगो, वो मशहूर सूश।
हाँ, सूश, वो कैसे बना?
उसके लिए उन्होंने पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी की एक ग्राफिक डिजाइन छात्रा थी कैरोलिन डेविडसन, उनसे संपर्क किया और उन्होंने सिर्फ $35 में वो लोगो डिजाइन किया।
सिर्फ $35, आज तो वो अरबों का सिंबल है।
बिल्कुल, दुनिया में सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चिन्हों में से एक है आज। और उसी दौरान बिल बोमन ने घर पर नाश्ते की टेबल पर एक और कमाल कर दिया।
नाश्ते की टेबल पर कैसे?
अपनी पत्नी को वॉफल बनाते देख उन्हें आइडिया आया। उन्होंने रबर लिया और उसे वॉफल बनाने वाले सांचे में डाल दिया।
अरे वाह।
उससे एक नया सोल बना जिसमें जबरदस्त ग्रिप थी। ये वॉफल ट्रेनर नाम से मशहूर हुआ और ये नाइकी का पहला बड़ा हिट जूता बना। इसने कंपनी की किस्मत ही बदल दी।
क्या बात है, मतलब इनोवेशन कहीं से भी आ सकता है।
बिल्कुल, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। ओनित्सुका के साथ एक लंबी और महंगी कानूनी लड़ाई चली जिसे नाइकी ने जीता।
अच्छा, वो जीत गए।
हाँ, कंपनी तेजी से बढ़ी, बहुत तेजी से, लेकिन कैश फ्लो यानी नकदी का प्रवाह, वो हमेशा एक समस्या बनी रही। बैंक उन्हें कर्ज देने से हिचकिचाते थे। और फिर एक और बड़ा तूफान आया।
एक और? कौन सा?
वो अमेरिकी कस्टम्स वाला मामला। बिल्कुल, अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग यानी US कस्टम्स सर्विस, उन्होंने अचानक एक पुराने अस्पष्ट कानून का हवाला दिया, अमेरिकन सेलिंग प्राइस ASP।
ASP ये क्या था?
ये बड़ा अजीब कानून था। इसका मतलब था कि आयात शुल्क माल के लागत पर नहीं लगेगा, बल्कि अमेरिका में बने वैसे ही तुलनात्मक माल की बिक्री कीमत पर लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा थी।
ओह, तो इससे तो ब्यूटी बहुत बढ़ गई होगी।
बहुत ज्यादा। कस्टम्स ने नाइकी पर $25 मिलियन का पिछला बकाया थोप दिया।
25 मिलियन?
नाइकी जैसी कंपनी के लिए ये रातों रात दिवालिया होने जैसा था। ये रकम कंपनी के कुल कीमत से भी ज्यादा थी उस वक्त।
बाप रे, ये तो मतलब अस्तित्व का ही संकट था, इससे कैसे उभरे वो?
ये नाइकी के लिए वाकई जीवन मरण का प्रश्न बन गया। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, राजनीतिक लॉबिंग की और आखिरकार सरकार के साथ $9 मिलियन पर समझौता करने में कामयाब रहे।
अच्छा, समझौता हो गया।
हाँ, लेकिन इस भयानक अनुभव ने नाइकी को सिखाया कि अपनी किस्मत पर खुद का नियंत्रण होना कितना जरूरी है, किसी सप्लायर या बाहरी ताकत पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है।
सही बात है। और इस सब उतार चढ़ाव के बाद 1980 में नाइकी एक पब्लिक कंपनी बनी, आईपीओ आया।
जी, कंपनी के शेयर आम जनता के लिए स्टॉक मार्केट में आ गए। ये किताब के अंत का एक अहम पड़ाव है, एक युग का अंत और एक नई शुरुआत। नाइट बाद में परोपकार में भी काफी सक्रिय रहे, खासकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को उन्होंने बड़ा दान दिया। और किताब में वो अपने बेटे मैथ्यू की दुखद मृत्यु और उसके जीवन पर पड़े गहरे असर का भी जिक्र करते हैं, बहुत ईमानदारी से।
तो अगर हम फिल नाइट के मूल दर्शन, उनके वैल्यूज को समझने की कोशिश करें, तो क्या चीज केंद्र में रही?
देखिए, मेरे ख्याल से उनके केंद्र में हमेशा दौड़ रही। जैसा हमने पहले कहा, उनके लिए दौड़ना सिर्फ एक खेल नहीं था, वो जीवन और बिजनेस का एक रूपक था।
रूपक कैसे?
मतलब लगातार चलते रहना, दर्द सहना, हार न मानना और हमेशा बेहतर करने की कोशिश करना। वो मानते थे कि असली प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से ही उत्कृष्टता यानी एक्सेलेंस हासिल होती है।
उनकी एक और सोच थी, प्रोडक्टिव डिससैटिस्फैक्शन। ये क्या था?
हाँ, सकारात्मक असंतोष। इसका मतलब था कि कभी भी अपनी उपलब्धियों से पूरी तरह संतुष्ट मत हो, हमेशा आगे देखो, हमेशा सुधार की गुंजाइश ढूंढो। शायद यही सोच नाइकी को लगातार नया करने के लिए प्रेरित करती रही।
ये दिलचस्प है।
बिल्कुल, और रिश्तों की अहमियत वो उनके लिए सर्वोपरि थी। बिल बोअरमैन, जेफ जॉनसन जैसे शुरुआती कर्मचारी जिन्हें वो मजाक में और प्यार से बट फेसेस कहते थे।
बट फेसेस? ये सिर्फ कर्मचारी नहीं थे,
ये एक मिशन पर निकले साथी थे। ये वो लोग थे जो शायद पारंपरिक कॉरपोरेट ढांचे में फिट नहीं बैठते, लेकिन अपने काम के प्रति जुनूनी थे, वफादार थे। नाइट ने समझा कि ऐसी अपरंपरागत लेकिन समर्पित टीम बनाना कितना जरूरी है।
उनकी प्रेरणा क्या थी? क्या सिर्फ पैसा कमाना था?
नहीं, मुझे नहीं लगता पैसा उनके लिए एक साधन था, साध्य नहीं। उनकी प्रेरणा कई चीजों से आती थी। एक तो अपनी काबिलियत साबित करने की इच्छा, खासकर शायद अपने पिता के सामने।
अच्छा।
दूसरा, बेहतर जूते बनाकर एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ाने का एक जुनून, एक सौंदर्य बोध कह सकती हूँ मैं, और शायद अपनी व्यक्तिगत असुरक्षाओं पर विजय पाने की एक अंदरूनी इच्छा भी।
और जिस तरह वो लगातार संकटों का सामना करते रहे, क्या उसका कोई खास तरीका था? आपने पहले मेटाबॉलिक अप्रोच जैसा कुछ कहा था।
हाँ, वो कोई औपचारिक शब्द नहीं है, पर उनकी सोच कुछ वैसी ही थी। वो मुश्किलों से निपटने में थोड़े अलग थे। वो समस्याओं को रुकावट नहीं मानते थे, बल्कि प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा मानते थे। जैसे शरीर भोजन पचाता है और उससे ऊर्जा लेता है, वो समस्याओं को अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखते थे, जैसे शायद हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कह सकते हैं। हर उपलब्ध संसाधन का रचनात्मक इस्तेमाल करते थे और जरूरत पड़ने पर अपने रिश्तों और नेटवर्क का पूरा फायदा उठाते थे। हार मानने के बजाय वो हर संकट को एक पहेली की तरह देखते थे जिसे हल करना है।
तो चलिए अब उन तीन खास पलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने नाइकी की कहानी को निर्णायक मोड़ दिया। पहला जाहिर है 1962 की वो जापान यात्रा और 1900 के साथ हुई पहली मीटिंग।
हाँ, वो पल जब बिना किसी तैयारी के, बिना किसी कंपनी के, उन्होंने मौके पर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का नाम गढ़ा और वितरण अधिकार हासिल कर लिए। ये सिर्फ एक चालाकी भरी चाल नहीं थी।
नहीं,
ये नाइट के पूरे उद्यमी सफर का एक पैटर्न बन गया। पहले कदम बढ़ाओ, फिर उसे सही साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। इसने उन्हें सिखाया कि आत्मविश्वास, ईमानदारी और जोखिम उठाने की हिम्मत से बड़ी से बड़ी बाधा पार की जा सकती है।
बिल्कुल। और दूसरा अहम मोड़ मेरे ख्याल से बिल बोरमैन का पार्टनर बनना 1964 में।
जी हाँ, सिर्फ $500 का निवेश, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। बोवरमैन का जुड़ना सिर्फ पैसे लाना नहीं था, वो अपने साथ विश्वसनीयता लाए, विशेषज्ञता लाए और सबसे बढ़कर उत्पाद को बेहतर बनाने का जुनून लाए।
हाँ, इनोवेशन।
बिल्कुल। इसी वजह से BRS सिर्फ एक इम्पोर्टर से आगे बढ़कर एक गंभीर एथलेटिक फुटवेयर कंपनी बनने की दिशा में बढ़ सकी। नाइकी ने यहाँ सीखा कि ऐसे लोगों के साथ साझेदारी करना कितना जरूरी है जिनके कौशल आपके पूरक हों, जो आपकी कमियों को पूरा करें। और उत्पाद नवाचार, वो नाइकी की पहचान का अहम हिस्सा बन गया।
और तीसरा, शायद सबसे नाटकीय मोड़, 1971 में ओनिसुका से अलग होना और नाइकी का जन्म।
हाँ, वो धोखा और फिर मजबूरी में अपना ब्रांड बनाना, ये एक तरह से मजबूरी में उठाया गया कदम था, लेकिन यही नाइकी के स्वतंत्र अस्तित्व का आधार बना।
कैसे?
अब उन्हें सब कुछ खुद करना था, डिजाइन, निर्माण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सब कुछ। इस संकट से सफलतापूर्वक उबरने के बाद नाइट और उनकी टीम का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। उन्हें यकीन हो गया कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। दूसरों पर निर्भरता खत्म हुई और नाइकी की अपनी पहचान बनी।
तो फिल नाइट और नाइकी की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, आम लोग?
देखिए, पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि सफलता की जो चमकदार कहानियां हम अक्सर सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनकी असलियत काफी अलग होती है। रास्ता सीधा और आसान नहीं होता, बल्कि बेहद उबड़ खाबड़ होता है, अनिश्चितताओं और लगातार संकटों से भरा होता है। दृढ़ता यानी लगे रहने की क्षमता शायद सबसे महत्वपूर्ण गुण है।
ये बात आज के समय में बहुत मायने रखती है, जब लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं। ये कहानी धैर्य रखने और लंबे समय तक टिके रहने का महत्व बताती है।
बिल्कुल, और ये भी कि सिर्फ नौकरी करने और अपने कॉलिंग या जुनून को फॉलो करने में कितना अंतर है। नाइट और उनकी शुरुआती टीम के लिए ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये एक मिशन था।
सही कहा, और उस मिशन के लिए एक वफादार टीम का होना कितना जरूरी है, भले ही वो टीम थोड़ी अजीब हो, जैसे नाइट के बट फेसेस।
हाँ, ये इस बात का सबूत है कि जुनून और साझा उद्देश्य अक्सर अनुभव या औपचारिक योग्यता से ज्यादा मायने रखते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो कंपनी के मूल्यों में विश्वास रखते थे।
लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
कौन सा?
वो है इस जबरदस्त समर्पण और जुनून की व्यक्तिगत कीमत। नाइट खुद मानते हैं कि काम पर इतने फोकस के कारण उनके पारिवारिक रिश्ते प्रभावित हुए, तनाव और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा। ये एक चेतावनी भी है कि सफलता के पीछे अक्सर बड़े त्याग छिपे होते हैं।
ये बिल्कुल सही बात है। और एक और चीज, असफलताओं को गले लगाना सीखना। नाइकी की संस्कृति में गलतियों से सीखना और फिर कोशिश करना, ये रचा बसा है। हर संकट, हर गलती एक सबक बनी जिसने कंपनी को और मजबूत बनाया। ये शायद सबसे बड़ा मानवीय सबक है। गिरना जरूरी नहीं, गिरकर उठना और सीखते रहना जरूरी है।
हाँ, ये सारे सबक किसी के लिए भी प्रासंगिक हैं, चाहे कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा हो, करियर में मुश्किलों का सामना कर रहा हो, या जीवन में किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहा हो। ये कहानी दिखाती है कि असाधारण चीजें साधारण लोगों द्वारा ही की जाती हैं, अगर उनमें असाधारण इच्छा शक्ति और दृढ़ता हो।
तो अगर हमें इस पूरी बातचीत को तीन मुख्य निष्कर्षों में समेटना हो तो वो क्या होंगे?
हाँ जरूर, तीन मुख्य बातें।
पहला, भावनात्मक अंतर्दृष्टि। उद्यमशीलता और जीवन में बड़ी सफलता अक्सर विरोधाभासों को अपनाने से मिलती है। आपको एक ही समय में आत्मविश्वासी भी होना है और विनम्र भी, अपनी जिद पर अड़े भी रहना है और जरूरत पड़ने पर लचीला भी बनना है। व्यक्तिगत विकास अक्सर चुनौतियों के बावजूद नहीं होता, बल्कि उनके कारण होता है। मुश्किलों से गुजरकर ही इंसान ज्यादा मजबूत और समझदार बनता है।
बहुत खूब। दूसरा?
दूसरा, बौद्धिक अंतर्दृष्टि। ये कहानी सीमित संसाधनों के साथ रणनीतिक सोच का एक शानदार उदाहरण पेश करती है। कैसे संकट के समय नाइट ने ठंडे दिमाग से विकल्पों का मूल्यांकन किया, जरूरी जानकारी जुटाई, अपने रिश्तों का सही इस्तेमाल किया और तात्कालिक खतरों से निपटते हुए भी अपनी लंबी अवधि की सोच को बनाए रखा। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में स्पष्ट सोच और सही रणनीति कितनी जरूरी है।
बिल्कुल। और तीसरा, अंतिम निष्कर्ष?
और तीसरा, सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, यूनिवर्सल इनसाइट। जीवन में एक सच्चा कॉलिंग या उद्देश्य ढूंढना और उसके पीछे पड़ जाना आपको सार्थकता और सफलता दोनों दे सकता है। लेकिन इसके लिए अनिश्चितता को स्वीकार करना और लंबे समय तक बिना रुके प्रयास करते रहना जरूरी है। सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने की यात्रा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ही असल में मायने रखती है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।